याद करो वो वक्त जब हमने समंदर भाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, फिर इसमें से तुम्हें बखैरियत गुजार दिया, फिर वहीं तुम्हारी आंखों के सामने फिरौनियों को डुबो दिया। याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 शब और रोज की करारदाद पर बुलाया, तो इसके पीछे तुम बछड़े को अपना माबूद बना बैठे। उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी, मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद तुम शुक्रगुजार बनो। जिंदा फिरौन से अल्लाह ने निजात दी, इन्होंने बछड़ा बना लिया। या फिर हालात के तकाबुल की बात करूंगी। अभी नाम लिया मैंने बरेसगीर पाक व हिंद का। मुसलमानों की ज़िंदगी में एक दौर गुजर चुका है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडियन मुस्लिम्स की ज़िंदगी को देखें कि हम एक मुश्तरक कौम के साथ रह रहे थे, यानी हम एक ऐसी जगह पे थे जब हम आज़ाद नहीं थे। अल्लाह सुबहान ताला ने 14 अगस्त 1947 को हमें ज़मीन का एक पाक टुकड़ा अता किया। अल्लाह का शुक्र किया हमने, अल्लाह की नेमत है पाकिस्तान। जब अल्लाह ताला अपनी नेमत दे दे, अब आप और मैं उस नेमत के साथ क्या करते हैं, ये असल बात है। इस वक्त मुहासबा इस बात का है, जो मेरा आपका इम्तिहान होगा कुरान पढ़ने के बाद, कि हम अपने मुल्क से शिर्क कुफर और बिदात को ख़त्म कर सकें। आज भी आप देखिए कि हम ज़हनी गुलाम हैं, क्यों? क्योंकि हमने पाकिस्तान लिया लेकिन कौम को एजुकेट नहीं किया, हमने वो सिस्टम नहीं बनाए। दुआ कीजिए कि आज के दौर में अल्लाह ताला ये काम हमसे और हमारी नस्लों से ले ले। हमारे बेटों, हमारे मर्दों को अल्लाह ताला ऐसा खूबसूरत किरदार अदा कर दे कि वो पूरी कौम का नसीब बदलने वाले बन जाएं। याद करो ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा को किताब और फुरकान अता की ताकि तुम इसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। इसको हाईलाइट कीजिए, किसी किताब के नजूल का मकसद क्या होता है? कि अल्लाह ताला के हुक्म से इंसान राह पाए। लअल्लकुम तहतदून। आज आप देखिए कि कुरान पाक नाम की एक खूबसूरत किताब, जिस वक्त आपके और मेरे सामने भी खुली हुई है, अमूमी तौर पे लोगों का इस किताब के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत गहरे ताल्लुक है माशाल्लाह। मसलन सबसे पहली बात है कि हम इस किताब पर ईमान लाते हैं, सब मुसलमान लाते हैं, कोई नहीं कह सकता कि नहीं लाता। फिर हम इससे प्यार करते हैं, फिर हम इसको बाबरकत समझते हैं, फिर बाज़ दफ़ा इसकी आयतें लिखकर बरकत की खातिर गले में और घरों में दीवारों पर लगा लेते हैं। बेटी की शादी होती है तो हम इस कुरान का खूबसूरत सा नुस्खा सर पे से रख के नीचे से गुजारते हैं कि बरकत होगी, जिन्नात भगाते हैं, है ना? अब मुझे ये सारे कामों को जमा करके बताइए, क्या कुरान सिर्फ इन कामों के लिए आया था? कुरान आया था लअल्लकुम तहतदून, बिगड़ी हुई कौम की इस्लाह इस किताब से हुई। आज अगर इस खुली किताब को हम गली गली कूचा कूचा आम कर सकें, लोगों को इस कुरान के नूर से जोड़ दें, यकीन करें दीन आसान लगेगा। आज हमने गैरों से दीन के वो मुश्किल अहकाम सुने, जब असली दीन पढ़ते हम कहते हैं तो इतना आसान है, ऐसे ही कल तक सोच रहे थे। मतलब आप देखिए, सच बताएं, सर से दुपट्टा उतरे तो वजू टूट जाता है, क्या हम ये नहीं सोचते थे? वजू करते वक्त सर पर एक खास अंदाज से दुपट्टा लपेटना, क्या ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था? बीमारी के दिनों में पहने हुए कपड़ों को अब सबको धोना है, ये पाबंदियां थी कि नहीं आपके मेरे ऊपर? कुरान पढ़िए सब खत्म, हमने खुद बोझ डाल दिए। तो दुआ कीजिए कि हम इस किताब को किताब हिदायत बना सकें। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ये नेमत लिए हुए पलटे, तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर सख्त जुल्म किया, बस तुम लोग अपने खालिक के हजूर तौबा करो और अपनी जानों को हलाक करो, इसी में तुम्हारे खालिक के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। इस वक्त तुम्हारे खालिक ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। याद करो जब तुमने मूसा से कहा कि हम तुम्हारे कहने का हरगिज यकीन न करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से एलानिया खुदा को तुमसे कलाम करते ना देख ले। इस वक्त तुम्हारे देखते देखते एक जबरदस्त कड़के ने तुमको आ लिया, तुम बेजान होकर गिर चुके थे मगर फिर हमने तुमको जिंदा किया, शायद किस एहसान के बाद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ये भी इनकी तारीख का एक वाक्य, मरने के बाद, यानी इनको मारने के बाद अल्लाह ने जिंदा किया, उनको छोड़िए अपने ऊपर लीजिए, क्या हम कभी मरते मरते बचे? ये जिंदगी जिसकी नेमत पे आज हम बात कर रहे हैं बार बार, क्या कभी खतरनाक बीमारी के मुंह से बचे? मूजी बर्स हो गई, डॉक्टर ने कह दिया खत्म हो जाओगे, माशाल्लाह आज भी जिंदा। रोड क्रॉस कर रहे थे, एकदम गाड़ी करीब आ गई और अल्लाह ने बचा लिया, डूबते डूबते बचे। और जहाज में जब ऊपर दो चार झटके लगते हैं, कहते हैं आज तो गए। ये जब भी हम किसी हादसे से बच जाते हैं, ये आपके मेरे लिए एक नया चांस होता है। लअल्लकुम तशकुरून का। अकलमंद वो है जो मौका मिले तो उससे खैर उठाए। अच्छा हम क्या करते हैं, जरा मुश्किल फंसी बकरा दे दो, अल्लाह आज इससे निकाल दे, आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगी। अगले बात क्या होता है, भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें वो शुक्रगुजार बना दें। फिर कुछ और इनामात, हमने तुम पर अबर का साया किया, मनो सलवा की गजा तुम्हारे लिए फ्राहम की, और तुमसे कहा कि जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी इनको खाओ, मगर तुम्हारे बड़ों ने जो कुछ किया था वो हम पर इनका जुल्म न था, बल्कि उन्होंने आप अपने ही ऊपर जुल्म किया। इसको हाईलाइट करें, याद रखिए बड़े से बड़ा गुना हो या छोटे से छोटा गुना हो, गुना करने वाला अल्लाह पे जुल्म नहीं करता, अपने नफ्स पे जुल्म करता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचा कर रखे। फिर याद करो जब हमने कहा था कि ये बस्ती जो तुम्हारे सामने है इसमें दाखिल हो जाओ, इसकी पैदावार जिस तरह चाहो मजे से खाओ, मगर बस्ती के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल होना और कहते जाना हैततुन हैततुन, हम तुम्हारी खताओं से दरगुजर करेंगे और नेकुकारों को मजीद फजलो करम से नवाजेंगे, मगर जो बात इनसे कही गई थी जालिमों ने इसे बदल कर कुछ और कर दिया, आखिरकार हमने जुल्म करने वालों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, ये सजा थी नाफरमानियों की जो वो कर रहे थे। यहाँ बार बार देख रहे हैं कि नाफरमानियों की सजा मिलती है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें हमारे गुनाहों पे दुनिया में भी पकड़ते हैं, असल पकड़ आखरत की है। छोटी छोटी खताओं पे दुनिया में अल्लाह तआला छोटा छोटा पकड़ के छोड़ देते हैं ताकि आप इस्लाह कर लो, लेकिन जब इंसान इस्लाह नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला उसको बड़ी मुश्किलात में भी डाल देते हैं। दूसरा इस हिस्से से जो बात बहुत ही खूबसूरत मिलती है कि जब अल्लाह तुम्हें कामयाबियां दें तो फिर जश्न ना मनाओ, बल्कि क्या करो, आजजी के साथ। कई सालों के अपने मुल्क से ये निकाले गए थे, पूरा मूसा का दौर गुजरा, यूशे बिन दौर का दौर आया, बिल आखिर ये अपने मुल्क में फातिह बनकर आए, तकब्बुर शुरू हो गया। आज आप देखिए बात जब तक अपने ऊपर ना ले समझ नहीं आती। माशाल्लाह अल्लाह 60-70 साल हो गए पाकिस्तान मिला हुआ, हर साल 14 अगस्त के नाम पे हम अक्सर जो कुछ करते हैं क्या वो इस पे नहीं आता? गैर मुल्कों में रहते हुए 14 अगस्त के नाम पर वो काम दुनिया में देखे गए जो मैंने कभी पाकिस्तान में भी नहीं देखे थे। क्या कि हम लोगों को खुश होकर दिखाते हैं कि हम आज आज़ाद हुए थे, अच्छी बात है, शुक्राना कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करते हुए दाखिल हो रहे थे, इतना सर झुका हुआ था कि आपकी दाढ़ी मुबारक जो थी वो ऊंट के कजावे से लग रही थी। तो खुशी का जश्न मनाना और हाय हुर्रा के दावे नारे, याद रखिए अल्लाह को पसंद नहीं। एक तो नजर लग जाती है, हसद पैदा हो जाता है, शर पैदा हो जाता है, और जब हम अपनी खुशियों के नाम पे अल्लाह को नाराज करते हैं तो आप मुझे बताइए कि अल्लाह से फिर काम नहीं पड़ता। तो हमेशा अपने लिए इधर एक अमल की बात लीजिए, जब कोई खुशी मिले, जब कोई नेमत मिले, और अल्लाह का शुक्राना अदा करें, सदके दें, आजजी रखें और उस नेमत को छुपाएं, एक्सपोजर से बचें, वरना बाद में फिर जब सजा मिलती है तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह ताला हमारी पकड़ ना करे। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा फुलान चट्टान पर अपना आसा मारो, चुनाचे से 12 चश्मे फूट निकले और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह इसके पानी लेने की है। इस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ पियो और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। यहाँ नोट कीजिएगा, अल्लाह का हुक्म ना मानना इससे फसाद फैलता। जैसे आप इस मुल्क में रहते हैं, क्या हम सब पूरी कोशिश नहीं करते कि इस मुल्क के लॉ को फॉलो करें? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप गाड़ी चलाते हैं, क्या आप ओवर स्पीडिंग करेंगे, सीट बेल्ट छोड़ेंगे? और अगर आप में ये सब करने लग जाएं तो इस मुल्क में फसाद होगा। बिल्कुल यहाँ इधर बात समझ लीजिए, अल्लाह ने मुझे आपको दुनिया में भेजा, अल्लाह को पता है मेरे आपके बारे में हक में क्या बेहतर है। वो हमें जिंदगी गुजारने के जो तरीके सिखाता है वो तरीके हमें ये साबित करते हैं कि अगर हम उसके मुताबिक जियेंगे खैर ही खैर होगी। आज इंसानियत जो परेशान है उसकी वजह यह है कि वो अपनी मनमानियां करती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देके आगे चलती हूँ। एक छोटे से बेबी को या जो 4-5-6 माह का नया नया खाना शुरू कर रहा है, ये 1 साल का हो गया, माँ क्या कहती है, मैं इसको खुद खिला दूँ, समेट के खिलाऊंगी। बच्चा क्या कहता है, मैं खाऊंगा। अब वो चम्मच में चावल के दाने 2 मुंह में गए तो 6 दाने नीचे फैल गया कि नहीं फैला? माँ कहती है मैं इसको नहलाती हूँ, बच्चा कहता है मैं खुद नहाऊंगा, फैलाता है ना। बच्चे को लगता है कि मेरी माँ मेरी दुश्मन है, ये मेरी आजादी के रास्ते की रुकावट है, लेकिन माँ क्या चाहती है, मेरे बच्चे के अच्छे अखलाक हो, ये अच्छा बोले, अच्छा चले। अब इस मिसाल से समझिए, इस दुनिया में अगर आज हर इंसान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिए तो ये दुनिया जन्नत है, और जन्नत को जन्नत कहते भी इसलिए है کہ وہاں کے لوگ اعلی اخلاق کے ہوں گے، اپنی مرضیاں نہیں کریں گے. اللہ کرے کہ یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بنے اور ہم یہاں فساد پھیلانے سے بچ جائیں. یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. یہاں آپ نوٹ کیجئے گا، ون ڈش کا انکار ہو رہا ہے. بے صبرہ پن اور نشکرہ پن جب قوموں میں آتا ہے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا غم اور ہم کھانا، کتنا کھائیں گے، کتنی ڈشز، مینیو، بفے، 18 کھانے، 6 سویٹ ڈشز، 4 قسم کے سیلڈ، 6 قسم کے بیوریجز. پیٹ تو اندر ایک ہی ہے. کیا آج ہم مسلمانوں کی یہ منہ بولتی تصویر نہیں ہے؟ اور یقین کریں کیا سب کھاتے ہیں؟ آدھا کھاتے آدھا پھینکتے ہیں. ایسا ایسا شادیوں پہ کھانا ضائع ہوتے دیکھا ہے، دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے. کھائیں جتنا کھانے کھائیں، جتنا پی سکتے، لیکن ندیدہ پن تو نہیں ہے. بنی اسرائیل کی زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ خواہش پرست ہو گئے تھے، ذائقوں کے حریص ہو گئے تھے، ٹیسٹ کانشس تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کر رکھے. اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے. سب کو جوڑیں تو کیا بنتا ہے؟ یا دہی بڑے یا حلیم. چٹ پٹی چیزیں چاہتے تھے. یہاں ذرا سا سمجھیے، بات بڑی اہم ہے، اس کو جانے نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کھانوں کا دشمن نہیں ہے، اسی نے تو پیدا کیا. کبھی کوئی ماں ایسی دیکھی کہ خوب کھانے پکائے اور بچوں سے کہ خبردار ہاتھ نہ لگانا؟ بلکہ مائیں تو کہتی ہی ہیں کہ بچے کھاتے نہیں ہیں. لیکن یہاں گڑبڑ کیا ہوئی؟ اللہ نے ان کو ایک بڑا مقصد دیا تھا. مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو. جب تم میرے کام کرنے لگو گے، تمہیں رزق روٹی کا میں خود ذمہ دیتا ہوں تمہارا. اس قوم کو اللہ نے آسمان سے من اور سلوا دیا، آگے آیت آنے لگی ہے کہ تم میرے کام کرو، میں تمہارے کرتا ہوں. جیسے آج مولویوں کو ٹرے میں عادت ہے کھانا کھا لیں، تم اللہ کے کام کرو، ہم آپ کے کرتے ہیں. ہے نا ایک مشہور کہاوت ہمارے یہاں، جو شام کو مسجد میں جا کے ایک ٹرے میں کھانا دے آؤ مولوی صاحب کو. اب وہ ایک روایت تھی، ہے آج نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن بچپن میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. فطری سی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے کام کریں گے، اللہ آپ کے لیے معاونین ضرور پیدا کرے گا. آپ کے بچے کا امتحان ہے، آپ بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا تم پڑھو، میں تمہیں کمرے میں ہی کھانا دے دیتی ہوں. جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ کام دے کہ تم کرو میرے کام، میں تمہارے روزی روٹی کا فکر کرتا ہوں، تم ایک مٹی میں ہاتھ ڈالو گے میں سونا بنا دوں گا، تم 4 گھنٹے کام کرو گے اس میں اتنی برکت ہے، تم 4 بچوں، بیوی، ماں، بہن کو سب کو کھلا پلا لو گے. یہ برکت صحابہ کی زندگیوں میں تھی، اس کے بعد تھی. جب جب لوگوں نے اس کو چھوڑ کر پیسے کو زندگی کا مقصد بنایا، نماز چھوٹی کوئی پرواہ نہیں، جمعہ چھوٹا کوئی پرواہ نہیں، روزہ چھوٹا، حج چھوٹا، اب وہ مشین بن گئے. کتنے مرد ہیں آج جن کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، اور غریب خود کھاتے کیا ہیں؟ وقت پہ کھانا بھی نہیں کھاتے. یہ ایک سزا ہوتی ہے. تو یاد رکھیے، کھائیں پئیں لیکن مقصد کو نہ بھولیں. یہی آج میرا آپ کا کام ہے. کئی سسٹرز ہیں، ہو سکتا ہے آج آپ میں سے کوئی آئیں ہیں، کل نہ آئیں، کہیں گی جی ہم نے کھانے پکانے. آج آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے رمضان میں نہ آئیں کھانے پکانے. لیکن جو زندگی کا مقصد ہے اس کو بھول کر اگر صرف کھاتے پیتے رہ گئے، کب تک؟ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو موسیٰ نے کہا، کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری وادی میں جا رہے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت جہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے. دعا کر لیں اللہ آج ہمیں دین کی حدوں سے باہر نہ کرے. دیکھیے گاڑی چلاتے چھوڑیے، گاڑی کھڑی کرتے وقت کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں پارکنگ لاٹ میں؟ 2 یلو لین کے بیچ میں گاڑی کھڑی کرنی ہے. پارکنگ لاٹ میں ایک گاڑی کھڑی اور آپ بالکل ایسی جگہ کھڑی کر دیں کہ اس کی گاڑی کا دروازہ نہ کھولے، تو آپ کو ٹکٹ مل جائے گا نا. یا آپ لائن کے اوپر گاڑی کھڑی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کو ٹکٹ ملے. زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو اتنی پابندیاں ہیں. 60 نہیں تو 70 کی سپیڈ پہ جائیں گے، آپ کو ٹکٹ مل جائے گا. تو کیا اللہ کے دین کے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ہم کوئی حد پہ نہ رکیں؟ پھر کہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو، پھر ہم سوچیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، یہ اللہ ہم سب کو دکھا رہا ہے. اور آج مسلمان بال مشابہ کہہ لیجئے کہ اسی راستے پہ چلتا دیکھتا ہے جس پہ پچھلی قومیں تھیں. فرمایا یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. آپ کے لیے خوشخبری ہے، زیادہ نہ گھبرائیں، زیادہ نہ ڈریں، اپنے حصے کا کام کرتے جائیں. اللہ کو مانیں، نبی کی اطاعت کریں، نبی کو مانیں اور نیکیوں کے پودے لگائیں، برائیوں سے رکتے جائیں. اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے. اصل بات یہ کہ اللہ کو غفلت پسند نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں غفلت سے نکال دے. 4 دن کی زندگی ہے، اس کو اللہ کی رضا سے گزار لیں. 4 دن کی زندگی ہم کہتے ہیں 60 سال کی لگا لیں، اس کے بعد آخرت کتنی ہے؟ ہم فیہا خالدون، نہ ختم ہونے والی آخرت. کون ہے عقل مند جو یہ 4 دن کا نقصان کر لے؟ اور حالانکہ واللہ ہی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ کی رضا پہ زندگیاں لگا کر دیکھتے ہیں تو اصل زندگی کا مزہ اور گلیمر آتا ہی اس کے بعد ہے. جب تک لوگوں سے پوچھ پوچھ کے جیے، کیا جیے؟ روز جیتے تھے، روز مرتے تھے، خوش آج تک ہم سے کوئی نہ ہوا. آپ کیا سوچتے ہیں؟ سب آپ سے خوش ہیں، سب آپ کے گن گاتے ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، سب آپ سے راضی ہیں. اکثر لوگ نو میں سر اٹھا رہے ہیں. آپ ایک رب کو راضی کرنا شروع کر دیں، واللہ ہی اللہ سب کو راضی کر دے گا آپ سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ اللہ سے پیار کریں، اللہ دوسروں کا دلوں میں آپ کا پیار ڈال دے گا. پھر اس کے بعد ایک اور اس قوم کا واقعہ، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامنا. ذرا سا اس پہ غور کریں، میں اس کو پھر پڑھوں گی. آپ کے ہاتھوں میں اس وقت قرآن پاک ہیں، اس کو چھوئیں، ٹچ کریں، اپنی اس کتاب سے ایسے فیل کریں. اور اللہ نے کیا کہا؟ خذو ما آتیناکم بقوہ، اس کتاب کو، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو احکامات و ہدایات اس میں درج ہیں ان کو یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جاتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چلو گے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے کلچر میں اس سے کیا سمجھا گیا کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر بھی کوشش کے باوجود کیئر نہ کر سکو، یہ ہاتھ سے گر جائے تو اس کا وزن کر کے آٹا تول کے صدقے میں دے دو. عموماً لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا. قرآن پاک کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، نہ کریں گے تو اپنے ایمان کا نقص ہے. لیکن بند کتاب کی تعظیم بہت آسان ہے. اس کو گوٹی والے کپڑے میں لپیٹنا، جزدان میں رکھنا، سونے کے تاروں سے لکھنا. بٹ اللہ کیا کہتا ہے؟ خذو ما آتیناکم بقوہ. اس سے مراد ہے ہر قسم کے حالات میں اس کتاب کو تھامے رکھنا. خوشی کا موقع ہے، اس کتاب سے پوچھ کے چلو. غم کا موقع ہے، اس کتاب سے پوچھو. صحت ہے، بیماری ہے، اور سب سے زیادہ بڑا اجر بھی یہی ہے کہ عام حالات میں جو نیکی کرتے ہو وہ مشکل حالات میں نہیں چھوڑو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی ہی کے تباہ ہو چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں تباہیوں سے بچائے. خود سے سوال کرتے ہیں، کیا میں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے؟ ذرا سی مجبوری آنے پہ میں اس کتاب کو چھوڑ تو نہیں دیتی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو پکڑنا آسان کر دے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے گی. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، ان کی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی یہ کہانی ہے کہ مچھلیاں پکڑتے تھے وہ لوگ، ان کا معاش ہی یہی تھا، یعنی فشرز تھے. اور ایسے وقت میں آپ کو پتا ہے کہ رزق کا جو انتظام تھا وہ یہی تھا. ہفتے کا دن ان کے لیے ہولی ڈے تھا، جیسے آج جمعے کی نماز اور خطبے کے دوران کسی مسلمان بردر کے لیے کام کرنا جائز نہیں ہے. حلال کمائی بھی ناکارہ ہو جاتی ہے اگر ایسے وقت میں نماز چھوڑ کر کچھ کما لیا. ان کے لیے ہفتے کا پورا دن تھا. اب مچھلیاں پکڑتے تھے، ہفتے والے دن مچھلیاں بہت آتی تھیں، یہ آزمائش تھی. آج بھی دیکھیے کہ حرام کے مواقع کا یا ناجائز رزق کا کثرت سے مل جانا یہ ایک بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. اب کچھ دن تو صبر کیا، لیکن اب کتنے دن صبر کرتے؟ اب سیدھا سیدھا اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتے تھے. یہ تو میں پھر ذرا سی محتاط ہو کے کہوں، یہ تو آج کے مسلمان کی ضرورت ہے نا کہ دھڑلے سے وہ نافرمانی کی چیز بیچے. वो हराम बेचे, वो कहते मैं क्या करूं, मेरा रिस्क है, मेरी दुकान ही नहीं चलती इसके बगैर। उनमें भी इतनी जुरत नहीं आई थी, बल्कि उन्होंने क्या किया, वहां खड़े खोदते, जुमे की रात जाकर वहां जाल लगाते, हफ्ते को कुछ ना करते, सारा दिन वो मछलियां जब जोर से आती तो उस जाल में फंसी रहती, जब हफ्ता खत्म होता है इतवार की सुबह शुरू होती ना तो जाके वो जाल मछलियों से भरे हुए ले आते। कोई पूछता भाई ये क्या किया, कहते देखो आज तो कुछ नहीं किया, हफ्ते को काम नहीं करना ना, अब तो कोई नहीं किया, जाल जुमे को लगाया था, मछलियां इतवार को पकड़ी हैं। ये अल्लाह को हीला पसंद नहीं आया, अल्लाह को दीन के नाम पे हीले बहाने ये पसंद नहीं है। नहीं ये जायज है, नहीं ये ऐसा नहीं, आज का दौर है, वेस्ट में रहते हैं, मुसलमान हैं, एक तो जायज है, दूसरा तो है, ये चीजें अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को सीधा साधा खरा मुसलमान पसंद है, यही इनका अंजाम था। अब अल्लाह ने बंदर बना दिया, बस लोग कहते हैं हाय हाय क्या हुआ, मछलियां पकड़ी तो बंदर बना दिया, शराब थोड़ी बेचते थे, मछली पकड़ने पे नहीं बंदर बनाया, अल्लाह के हुक्म के हीले बहानों पे बंदर बना दिया। ये वाकया इंशाल्लाह हम सूरत अल अराफ में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। दुआ कर लीजिए कि अल्लाह में हीले बहानों से बचा ले। फिर वो वाकया याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय जिबा करने का हुक्म देता है, कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा ने कहा मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूं कि जाहिलों की सी बातें करूं। अब जरा रुकिए, ये भी तो आपकी दौ में है ना, तो ये जहालत का काम है मजाक करना। देखिए एक होता है मजाक और एक होता है मजाक। आप जॉली बन सकते हैं, हल्की फुल्की बात करके किसी को हंसा दे, किसी माहौल को बदल दे, कोई हल्का सा शुस्ता किस्म का लतीफा बता दे, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना जायज नहीं है। ये तो बहुत ही नापसंदीदा बात, और खास तौर पर फिर मजाक और मजाक के नाम पर झूठ बोलना, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बोले अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो कि हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। यहां मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊं, क्योंकि ये वाकया असल में सूरत बकरा की वजह तस्मिया भी है, यानी सूरत को सूरत बकरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गाय का वाकया है। बुनियादी तौर पे इस वाकये के पीछे तीन रीजन है। नंबर एक ये कि मिस्र में रहते हुए बनी इसराइल जो थे वो गाय की ताजीम करने लग गए, जैसे इंडिया में रहते हुए गौ माता का कल्चर हिंदुओं का देकर कुछ मुसलमान भी कहते हैं हम गाय का गोश्त नहीं खाएंगे, एक असर हो जाता है माहौल का। अल्लाह ताला इस असर को तोड़ना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि इनके दिल में ख्याल आ गया था कि अब मरने के बाद दोबारा अल्लाह जिंदा नहीं करेगा, ये भी एक बड़ी बात थी। तीसरी एक वजह यह बनी कि कत्ल हो गया था, और वो कत्ल जो था मुआशरे में एक बड़ा मुश्किल सवाल बना हुआ था कि किसने कत्ल किया। अल्लाह ताला ने इन तीनों का इलाज मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से बताया कि कोई एक गाय ले और उसको जिबा कर दे, जब गाय जिबा करेंगे तो उसकी ताजीम दिल से निकलेगी ना, जाहिर है कि उसकी बड़ाई का एहसास खत्म हो जाएगा, और उस गाय का एक टुकड़ा गोश्त का उठाकर मुर्दा जो शख्स है उसके ऊपर लगाया जाए। अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं, जू ही वो लगेगा वो मुर्दा जिंदा होगा, थोड़ी देर के लिए जिंदा होगा, अपने कातिल का नाम बताएगा, तो सोसाइटी का एक दूसरा इश्यू भी खत्म हो जाएगा कि कातिल कौन था, और तीसरी बात है कि मुर्दे को जिंदा होता देखेंगे तो आखिरत पर इनका ईमान आएगा। सीधा सा हुक्म था, अल्लाह को इससे ज्यादा नहीं था सरोकार, ये करना नहीं चाहते थे। गाय को ताजीमन बड़ा समझते थे, हाँ ये कैसे हो सकता है हम अपने खुदा को मार दें, मुंह से नहीं कह सकते थे क्योंकि मुसलमान थे। तो इन्होंने देखिएगा अब जरा कितने बहाने घड़े, पूरा पढ़िए फिर आपको इसमें से बहुत सारे इशारे मिलेंगे कि जब दिल ना माने कुछ काम करने को तो बहाने बहुत सारे हैं। असल ये कहानी है इसकी, पीछे हीले साजी थी, यहां बेजा सवाल आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का इरशाद है कि वो एक ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बच्चिया बल्कि दरमियानी उम्र की हो, लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है इसकी तामील करो। फिर कहने लगे अपने रब से ये और पूछ दो कि इसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा वो फरमाता है जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शोख हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। फिर बोले अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है। सच बताएं कि अल्लाह ने कहा था ये कुछ है। यहाँ एक छोटी सी बात नोट करें, आज भी कुछ लोगों का दीन के साथ यही मिजाज है, छोटे छोटे इतने मसले पूछते हैं, करने को दिल नहीं चाहता, और उनका दिल होता है कोई एक दीनदार आए और कहते नहीं नहीं ना करो ताकि हम बच जाएं। जिसने काम करना है वो सवाल नहीं पूछता, वो करके निकाल देता है, और सहाबे कराम का मिजाज ऐसा ही था। अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसका पता पा लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया अल्लाह ताला कहता है वो एक ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना जमीन जोतती है ना पानी खींचती है, सही सालम और बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ अब तुमने ठीक पता बताया। फिर उन्होंने गाय को जिबा किया हालांकि वो ऐसा करते हुए मालूम ना होते थे, और तुम्हें याद है वो वाकया जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर इसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छुपाते हो इसे खोल कर रख देगा। उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को इसके एक हिस्से से जर्ब लगाओ। देखो इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो, मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए। अब ये आखिरी आयतें आज के इस हिस्से की जो हम पढ़ रहे हैं, आप इन आयतों पर जरा सा गौर व फिक्र करेंगे तो बहुत सारे हिकमत के मोती मिलेंगे। और वो क्या है कि जब अल्लाह के हुक्म को सुनकर माना ना जाए और अल्लाह की हदों को तोड़ा जाए तो दिल सख्त हो जाते हैं। अल्लाह हमें दिलों की सख्ती से बचाए। फरमाया पत्थरों की इस तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ इनसे भी बड़े हुए, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिससे चश्मे फूट निकलते हैं। आपको तो चश्मे निकलते हैं ना, स्प्रिंग्स, उसकी तरफ इशारा है। कोई फटता है और इसमें से पानी निकल जाता है। आप देखिए कि पहाड़ी इलाकों में जाए तो आपको पहाड़ों में से पानी निकलता हुआ दिखता है। और कोई खुदा के खौफ से लरस कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। क्या पता चला के पत्थरों के अंदर जिस तरह ये मुख्तलिफ चीज़ों के बाद कुछ ना कुछ ज़िंदगी के असरात पैदा होते हैं, यही चीज़ें हमें इस दुनिया में भी नज़र आती हैं। बस लोग ऊपर से बड़े सख्त लगते हैं, स्टबन, आप कहते हैं बहुत बेदीन है। ज़िंदगी में कोई एक हादसा आता है, अल्लाह रहम करे जवान बच्चे का इंतकाल हो गया, तलाक हो गई, कोई कारोबार डूब गया, खतरा हो गया, ऐसा दिल पलटता अल्लाह अपनी तरफ ले आता है। आपके अपनी इर्द गिर्द जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद होंगी, आप जरा इसके ऊपर गौर व फिक्र करके देखिए ये सब क्या है। जिंदगी में वो गम जो आपको अल्लाह से जोड़ दे, उस खुशी से बेहतर है जो आपको अल्लाह से दूर कर दे। अल्लाह ताला में बचा के रखे। ऐ मुसलमानों, अब क्या तुम इन लोगों से तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? हालांकि इनमें से एक गिरोह का तरीका ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना, हमने भी सुना है, फिर खूब समझ बूझ कर जान बूझ कर उसमें तहरीफ की। अल्लाह हमें इससे बचा दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम इन्हें भी मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से अकेले में बातचीत होती है तो कहते हैं क्या बेवकूफ हो गए हो, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में इन्हें हुज्जत में पेश करें। और क्या ये जानते नहीं कि जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं अल्लाह को सब बातों की खबर है। याद रखिए, दो घरों का मुसाफिर इसी तरह के रवैयों में अपने आप को पेश करता है। यहां से आप देखिए कि इनका जाहिर और बातिन का फर्क दिखता है। इधर तक जो भी हमने हिस्सा पढ़ा है ना, ये उलमाए यहूद पर तनकीद थी। अब अगले हिस्से में अवाम, आमतुन नास का तरीका क्या था, और इनमें से एक दूसरा गिरोह उम्मियों का है, अनपढ़, जो किताब का तो इल्म नहीं रखते, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहमो गुमान पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और तबाही है इन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरा का नविश्ता लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से आया हुआ है ताकि वो इसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल कर लें। यानी आप देखिए कि ये सारा कुछ जो इधर बयान किया जा रहा है, इस पे कमेंट है किस बात का कि जब दीन के लोग दीन को छुपा लेते हैं तो अवाम जाहिल रह जाते हैं। वो आम किताब को, यहाँ थोड़ा सा एक मैसेज है, इंशाल्लाह हम आयत नंबर 78 पे ही रुकेंगे। हमारा आज का गोल अल्लाह के हुक्म से पूरा हुआ, नेक्स्ट हमारा हिस्सा था, यहाँ आखिरी बातें करके रोकूंगी इंशाल्लाह, कल हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। और वो क्या है कि यहूद के मजहब में ये जो कुरान आपके हाथ में है ना, उनकी तौरात थी, इस तौरात का आम लोगों के हाथ में होना जुर्म था। इनके उलमा ने एक तसव्वुर दिया था दीन का, और वो क्या था कि ये दीन सिर्फ उलमा के पढ़ने की चीज है, बड़े बड़े लोग जो काफी इल्म सीख ले वो इस किताब को पढ़े। नतीजा क्या हुआ कि हम जैसे आम सीधे साधे लोग कुरान को हाथ नहीं लगाते थे, डरते थे, रोब बड़ा था इस किताब का। अब नतीजा क्या हुआ, आम लोग दीन से दूर रह गए, कोई मसला पेश आता तो जाकर मौलवी साहब से पूछ लेते। अब आप बताइए, मौलवी साहब अल्लाह से डरने वाले हैं वो तो ठीक ही बात बताएंगे, इनके उलमा में ये खराबी आ गई, लोगों को पैसे देकर मसले अपनी मर्जी के बताते थे। अब जब ये सब कुछ होता है अल्लाह ने कहा इल्ला अमानिश, पीछे सिर्फ ख्वाहिशें रह जाती हैं। व मिनहुम उम्मियून ला यालमून अल किताब, इनमें से कुछ उम्मी हैं जो किताब तो पढ़ते ही नहीं है। आज मुसलमानों का क्या हाल है? आज उम्मत मुस्लिमा में कितने लोग इस कुरान का तर्जुमा भी जानते हैं? मैं आप सबको कल तक के लिए काम देती हूँ, 10-10 लोग आप अपने इर्द गिर्द प्यार से, मोहब्बत से, बड़े इज्जत और तकरीम के साथ उनसे एक सवाल करें कि जब आप कुरान पाक की तिलावत सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियों में भी चलती है, आगे जाएंगे तो रमजान में तरावियों में भी सुनेंगे, जब आप कुरान सुनते हैं, दूसरी बात जब आप खुद पढ़ते हैं सुबह फजर के बाद, अक्सर एक दो रुकू पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एहतमाम बहुत जगह पे है, समझ कितना आता है। अगर इस वक्त ये अरबी का कुरान सिर्फ सामने होता और उर्दू हमारे सामने ना होती तो हमें कितना समझ आता। ये है वो सोच जिस पे आज मैं आपको छोड़ूंगी। इस वक्त आपके मेरे लिए सिर्फ कुरान का तर्जमा एक गाइड का काम नहीं कर रहा, कितने लोगों ने इस हिस्से को समझा? अल्हम्दुलिल्लाह सबने समझा, क्योंकि आपको आपकी लैंग्वेज में समझ आ रहा है। अब कर दे सारे कुरान बंद और अरबी का कुरान ले ले और आपको कहा जाए कि इसको समझे, नहीं समझ सकते ना। क्यों? इसलिए कि उसको समझने के लिए थोड़े से वक्त लगाने की जरूरत होती है। तो याद रखिए, जब कौमें इल्म से दूर होती हैं, इल्ला अमानिश, आरजुएं, क्या आरजुएं? फलां जगह से गुजर जाओ जन्नती, फलां अमल कर लो सवाब, ये वजीफा करोगे तो इतने जन्नत में महल बनेंगे। ये तब होगा जब दीन पे अमल भी होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमानी से बचाए। वइन्हुमिल्ला यजुन्नून, और गुमान, और जस्ट लाइक इमेजिनेशन पे दीन का बुनियादें रखी हुई है। अल्लाह ताला में हकीकी इल्म अता फरमाए। जजाक अल्लाह खैर वाहसनु जजा। आप में से बहुत सारों का आज पहला एक्सपीरियंस होगा, खूब थके होंगे लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना है माशाल्लाह, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कल के लिए एक दो छोटी सी चीज़ें बोल दूँ, मज़ीद अच्छा माहौल हो जाए। नंबर एक, हील वाले जूते ना पहन कर आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नीचे टाइल्स हैं तो ज़रा सी भी होता है तो उससे आवाज़ आती है। दूसरी बात है कि आप अपने कुरान पाक जो ला रहे हैं, कोशिश कीजिए कि ये बड़े बैग्स ना लाएं, बल्कि कपड़े के जो भी कोई सॉफ्ट से बैग्स होते हैं उसमें रख कर लाएं, कम सामान हो आपके सामने टेबल पर रखा हुआ ताकि आप बहुत ही और फोकस्ड हो। और अगर ये कह दूं कि फोन ही ना लाएं साथ तो आप कहेंगे कि हम यहाँ पहुंच भी नहीं सकेंगे। तो बहरहाल जज़ाकअल्लाह खैर। कल के लिए एक बात छोटी सी कर लें, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, अपने साथ एक को ले आए, मुमकिन है? कौन कौन लाएगा अपने साथ एक को? तो फिर और कुर्सियां लगवा लें इंशाल्लाह। चलिए जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।